समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों पर तो हमारी नजर रहेगी ही, उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लवली निकम, मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा। सायरा नमस्कार। और भीषण गर्मी का प्रचंड जारी है और आज 5वें दौर का मतदान है, तो हम अपने उन्हीं सभी श्रोताओं से जो उस इलाके में हैं जहां वोटिंग हो रही है अनुरोध करते हैं कि अपना ध्यान रखें, पानी की बोतल छाता सब लेके जाएं, लेकिन मतदान जरूर करें।
यस, एब्सोल्युटली। नमस्कार आदाब। ऑन दैट नोट वी बिगिन टुडेज शो परिक्रमा एंड लवलीन हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो, सो विदाउट मच अडू लवलीन, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। Voting underway for 49 seats in 5th phase of Lok Sabha elections, nearly 48% turnout recorded till 3 pm.
ओडिशा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले जा रहे हैं।
कैंपेनिंग फॉर रिमेनिंग 2 फेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री पोल्स इन फुल स्विंग, प्राइम मिनिस्टर एंड सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी होल्ड्स रैलीज एंड रोड शो इन ओडिशा।
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्ला हियान का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के लोगों के साथ है।
And India's Deepthi Jivan Ji smashes world record in women's 400-meter event to win gold medal at World Para Athletics Championships in Kobe, Japan. And now it's time for our segment Dateline India. और लवलीन, आपने शुरुआत में तो कह ही दिया था कि भीषण गर्मी, उसका प्रकोप तो जारी है, लग रहा है कि जैसे कि सूरज आग बरसा रहा है, isn't it? And that's why today in Dateline India we will talk about the heat wave.
जी, बहुत गर्मी है और बीच बीच में अलर्ट्स भी आता रहता है और हम एडवाइस भी दे रहा है मौसम विभाग कि अपना पूरा ध्यान रखें, बाहर निकले तो ध्यान रखें, कुछ ठंडा पानी पी के जाएं, या 12 से 4 का जो टाइम है जिसमें भीषण गर्मी रहती है उस टाइम घर से न निकलें। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिन के लिए भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में भीषण गर्मी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मॉनसून मालदीव के कुछ हिस्सों और कोमेरिन क्षेत्र, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप और दक्षिण अंडमान महासागर में पहुंच गया है। बुधवार तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है।
That's right, Navreen. And while the north is witnessing heat wave conditions all over, southern India, however, is facing rainfall. In fact, pre-monsoon showers have already begun there. Rains continue to lash in many parts of South India, including Kerala's Kozhikode, Tamil Nadu, and many more. Red alert is issued in 3 districts today. And let's listen from Mayusha. What is the latest update from there?
Pathanamthitta, Kottayam and Idukki district are under red alert today. Meanwhile, the Met Department has issued an orange alert for Thiruvananthapuram, Kollam, Alappuzha, Ernakulam, Thrissur, Palakkad, Malappuram and Kozhikode districts, with the remaining districts under a yellow alert. The state is predicted to experience incessant rain for coming 5 days. Fishermen are advised not to venture out to sea due to the anticipated intense rain and possibly strong winds. Hilly regions of the state are under high alert. The state revenue minister K. Rajan said that emergency control rooms are opened in all collectorates and taluk offices across Kerala. The minister also stated that instructions have been given to open relief camps if necessary. The public is requested to contact control rooms for emergency using the toll-free numbers 1077 and 1070. Mayusha for Parikrama from Thiruvananthapuram.
And here's giving you some tips how to beat the heat. Well, hydration, as we said initially, that of course it is the first tip that we are going to address. It's common knowledge that hydration is key to getting through the summers. Dehydration is often seen in those who fail to consume fluids regularly. One simple rule to check if you're actually dehydrated is by checking the color of your urine. If it's dark brown in color, you'd need to drink some couple of, you know, glasses of water. Ideally, it should be pale or straw yellow. Other symptoms of dehydration include lethargy, dizziness, nausea, headaches and dry mouth. Aur bahut se log aksar jo hai jaldbazi mein office mein jaldi jaldi mein nikal jate hain, but keeping a bottle handy, I think that also plays an important part. Kyunki kai baar hota hai aapko ehsaas nahi hota ki pyaas lagi hai,
par mein pata chalta hai pani nahi ho, chhata lekar zarur nikle taki thoda sar ka bachav ho, nahi to direct heat sir pe padti hai.
Bilkul bilkul. Aur khali kai baar aisa hota hai, at least for me it happens, Lavin, that bottle ko dekh ke bhi pyaas lagti hai, aapko ehsaas nahi ho raha hota, but when you see the bottle in front of you, you feel that okay, let me take a sip of water. So please carry a water bottle. Also ensure that most of the local drinks are like buttermilk, coconut water, lemon juice, nibu pani. In fact, jise panna bolte hain, aam panna, wo bahut acha hota hai loo se ladne ke liye. And even in your house, make sure that every room has a bottle of water handy. If you are someone who easily forgets, please set alarms to drink water or use an app. Yes, in fact, there are apps these days to remind you that you have to drink water.
जी, पानी बहुत जरूरी है और अगर आप किसी काम में बहुत व्यस्त हैं, भूल जाते हैं, तो बेटर यही है कि रिमाइंडर उसमें लगा दें. और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भीषण गर्मी को देखते हुए गाजियाबाद, नोएडा में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के स्कूल कक्षाएं बंद कर दी गई हैं. नोएडा में अगले आदेश तक गाजियाबाद में इस महीने की 25 तारीख तक कक्षाएं नहीं होंगी. नोएडा में नर्सरी से आठवीं तक की कक्षाएं भीषण गर्मी को देखते हुए अगले आदेश तक बंद की गई हैं. जिला शिक्षा विभाग ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद सहित अन्य सभी शिक्षा बोर्डों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. और हम यही सलाह देंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, या अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो बेहतर है कि गर्मी, जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, 11 से लेकर 4-5 बजे तक न निकले तो ही बेहतर है.
एब्सोल्युटली.
और सायरा, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का, क्या कुछ खास है उनके पास, तो आज कहां से शुरुआत कर रहे हैं?
वेल, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता, वेयर इंडियाज लार्जेस्ट लाइब्रेरी, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इज लोकेटेड. इट्स लोकेटेड इन अलीपुर. इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. द लाइब्रेरी इज डेजिग्नेटेड टू कलेक्ट, डिसेमिनेट एंड प्रिजर्व प्रिंटेड मटीरियल प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री. इट हैज अ कलेक्शन इन एक्सेस ऑफ 25 लाख बुक्स एंड रिकॉर्ड्स. अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट फ्रॉम सुष्मिता.
The National Library of India is one of the 4 designated libraries entitled to receive under the Delivery of Books and Newspapers Public Libraries Act 1954 a copy of every publication published anywhere in the country. The library is a permanent repository of all reading and printed materials produced, written or wherever published and in whatever language. The origins of the National Library, Kolkata, can be traced to the establishment of Calcutta Public Library in 1836. Later, the Calcutta Public Library and the Imperial Secretariat Library were merged and gave way to the establishment of the Imperial Library in 1903. After independence, the Imperial Library came to be known as the National Library. It was accorded a special status of an institution of national importance under Article 62. In the 7th schedule of the Constitution of India. It was thrown open to the public on the 1st of February 1953 from its new premises at the sprawling 30-acre Belvedere Estate. The National Library provides to the public reading, reference and bibliographic services besides lending books. The library has digitized around 80 lakh pages from its rare collection of important documents which are available to readers through the Indian Culture Portal. Sushmita Mondol, Akashvani, Kolkata.
और गोवा की बात करें तो सायरा, गोवा अपने आप में एक प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है जहां अक्सर लोग जाते हैं. और गोवा वहां क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, उसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, लोग वहां खूब जाते हैं फिल्म देखने. अब सरकार ने कैशियो फेस्टिवल यानी काजू उत्सव भी मनाया है और इस बार मनाया गया है 10 मई से लेकर 12 मई तक. जब उद्घाटन समारोह हुआ तो उस दौरान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने कहा कि कैशियो फेस्टिवल यानी काजू महोत्सव जो है उसको हम राज्य उत्सव का दर्जा दे रहे हैं और ये हर साल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ही तरह. तो और जानकारी अपने सहयोगी तुषार से लेते हैं.
This festival brought together various stakeholders from the cashew sector like self-help groups, farmers, industry including processors, distillers, retailers, agriculturalists, restaurant owners, academicians, technical experts and others. The festival aimed to showcase cashew and it discussed the ways to increase its production in the state of Goa. Second edition of the Goa Cashew Fest presented an unique opportunity to educate youth, new generation in farming community, etc. about the significance of cashew harvesting and promoting and preserving the rich history of cashews in Goa.
Cashew Fest Goa 2024 Season 2 was a delightful celebration that helped to bring together culture, tradition and the significance of cashew in Goa's identity. Festival provides a significant platform to discuss various reasons, factors for low productivity of cashew instead in spite of all favorable and conducive environments. The highlight of the festival is undoubtedly the Sundowner event where attendees can groove to the beats of well-known bands like Jazz Junction, Anika Project and Jukebox Trio.
An immense response was received for this second season of the Goa Cashew Fest. Thousands of the visitors including delegates, experts, event partners and others attended the festival. Cashew Festival promoted the traditional method of making feni, a local alcoholic beverage made from the cashew juice through the cashew gallery and showcased Goan kunbi fabric. In addition, by-products made from the cashews were promoted and sold at the event. Such a festivals are definitely working as an encouragement to the all the stakeholders. Tushar Jadhav for Parikrama, Akashwani Panaji, Goa.
And now from Goa, we head over to the northeast. The Kaziranga National Park and Tiger Reserve is known for one-horned rhinos and other animals as well. Recently, the second meeting of the Anti-Rhino Poaching Task Force was held at Kaziranga to review the existing rhino protection measures. We have more details from our correspondent.
The World Heritage Site Kaziranga National Park and Tiger Reserve is known for its one-horned rhinos. The park also houses a significant number of Bengal tigers, making it a tiger reserve. Other animals one can spot there include elephants, wild water, buffaloes and various species of deer. Kaziranga offers a plethora of activities for nature and wildlife lovers including elephant and zoo safaris and nature walks. Antisocial elements kills rhinos for its horn. To curb this menace, Assam government organized the second meeting of the Anti-Poaching Task Force at Kaziranga to review the existing rhino protection measures, forest police coordination, deployment of existing forest protection forces, and strengthening of the intelligence networks. Presentations were made by forest and police officials from four rhino-bearing areas. The task force made several crucial recommendations to bolster anti-poaching efforts, particularly in light of the increasing rhino population. With the increase in the rhino population due to concerted efforts of the Assam government, rhinos are increasingly venturing into newer areas, including Burhatapuri and Majuli, as seen over in the last 2 years. The task force also recommended for greater coordination and strengthening of surveillance and conducting regular meetings in all rhino-bearing areas in district areas. Aminul Huzuddar, Akashvani News, Guwahati.
In Mumbai's Dharavi area, a polling station is situated where country's largest number of polling booths are being established in a single campus. Dharavi Transit Camp School Complex has a whopping number of 34 polling stations with around 30,000 voters registered across these booths. Various color codes are given to the group of polling stations. Same color code strip is printed on the voter slip and carpet and tent of same color is also spread there. But due to the large number of registered voters, waiting rooms are though created. However, they are empty because proper arrangements of queue management is lacking. And in fact, feeding centers are also created for mothers. Very interesting update from our Mumbai correspondent.
देश भर में सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ है वो है हमारा धारावी ट्रांजिट स्कूल कैंप. यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोविजन सारे वोटर्स के लिए बनाए हैं. जो मेरी स्कूल है वो चार कलर में हमने डेकोरेट की है. जो जो बूथ जिस कलर में आता है उस कलर के हमने पाथ बनाए हैं और आप वो पाथ फॉलो कीजिए, आप उसी बूथ में पहुंचेंगे जहां आपको जाना है.
सायरा और अब निकलते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सफर पर. जानते हैं क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन.
বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান তুমি কি এমনি শক্তিমান.
In today's episode we remember great nationalist Bipin Chandra Pal, who died on the 20th of May 1932. He is widely known as the part of the famous trio of Lal Bal Pal, comprising Lala Lajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak.
Amader bhanga gola tomar hate emon obhiman tomader emni obhiman.
Bipin Chandra Pal, popularly known as the Bengal Tiger, was considered one of the most independent and outspoken thinkers. In the wake of the partition of Bengal in 1905, the British government came out with repressive measures to contain students' participation in the struggle. One of them was the Carlisle Circular, which was issued by the Chief Secretary of Bengal, Thomas Carlisle. Bipin Chandra Pal protested strongly against the circular and advocated for education on nationalistic lines. In one of his lectures, he said,
"Why should politics be tabooed from our university and our schools? Do they do it in England? Is politics condemned even in the public schools of England? In the universities, do they not discuss patriotic and academical problems, but actually deal with the burning political questions of the day?"
Bipin Chandra continued to work for the nation till his death. We salute the great nationalist.
We also remember Andhra Kesari Tanguturi Prakasam, who died on the 20th of May 1957. Prakasam protested against the Simon Commission and took part in the Salt Satyagraha and the Quit India movement.
Prakasam was born on the 23rd of August 1872 in Guntur district of present-day Andhra Pradesh. In 1904, Prakasam went to study law in the United Kingdom. During his time in the UK, he interacted with Indian nationalist leaders like Dadabhai Naroji, Ramesh Chandra Dutt and Lala Lajpat Rai. The nascent interest he developed in the Indian independence movement was then fueled when he returned to India and started practicing at the Madras High Court. Inspired by the speeches of Bipin Chandra Pal, who was campaigning in Madras during the early 1900s, Prakasam decided to give up his law practice and devote his life to the independence movement.
Prakasam took an active part in the protests against the Simon Commission and led the successful Salt March in the Madras Presidency. He was arrested for his participation in the Quit India movement. He was popularly known as Andhra Kesari, the Lion of Andhra, for his valor during protests against the Simon Commission. He started the newspaper Swarajya in English, Tamil and Telugu. The newspaper served as a platform for his involvement in ground-level politics.
Prakasam was elected to the Madras Provincial Legislature in 1937 and served as the Revenue Minister. He won the elections again in 1946 and became the Chief Minister of Madras Presidency. Prakasam was also elected to the Constituent Assembly from Madras.
After independence, Prakasam worked towards the creation of the state of Andhra Pradesh on linguistic lines. He formed the Hyderabad State Praja Party in 1952. Prakasam was appointed as the first Chief Minister of the newly formed state of Andhra Pradesh in 1953. Till his death on the 20th of May 1957, Prakasam continued to work for the weaker sections of the society. We salute the great Indian.
We also remember Indian National Army member Lance Naik Hari Ram. A resident of Haryana, Hari Ram served in the 3rd Guerrilla Regiment of INA and was martyred in action near Indo-Burma borders on the 20th of May 1944. We salute the great son of the soil.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में, जानते हैं वहां की हलचल। जापान के कोब में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर पहला स्वर्ण पदक जीता। 20 वर्षीय दीप्ति ने अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क का 55.12 सेकेंड का रिकॉर्ड तोड़ा। दीप्ति ने 55.07 सेकेंड में यह प्रतियोगिता जीती। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस पैरालंपिक में जगह सुनिश्चित कर ली है। सुकांत कदम पहली बार पैरालंपिक्स में पुरुषों की SL4 श्रेणी में खेलेंगे। तरुण और सुहास ने भी इसी श्रेणी में क्वालिफाई किया है।
एंड सिंस इट्स वोटिंग डे इन महाराष्ट्र सो मार्केट्स आर क्लोज, वी डायरेक्टली हेड ऑन टू रिमेम्बर सम ऑफ दोज पर्सनालिटीज हु ईदर हैव देयर बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज टुडे। इस फेरिस में सबसे पहला नाम है आज सुमित्रा नंदन पंत का। Yes, one of the most celebrated 20th century poets of Hindi language, who was known for romanticism in his poems, which were inspired by nature, people and beauty within.
जी, हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक हैं। सुमित्रा नंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए। पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाते हैं और इन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम भी दिया था। सायरा,
yes.
पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता था। हरिवंश राय बच्चन और श्री अरविंदो के साथ उनकी जिंदगी के काफी अच्छे समय गुजरा। आधी सदी से भी अधिक लंबे उनके रचनाकाल में आधुनिक हिंदी कविता का एक पूरा युग समाया हुआ है। और जो उनकी पहली कविता संभवतः मानी जाती है वो है नभ की उस नीली चुप्पी पर घंटा है एक टंगा सुंदर, जो घड़ी घड़ी मन के भीतर कुछ कहता रहता बज बज कर, ये गिरजाघर के बारे में उन्होंने लिखी थी। एक और कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। जय जन भारत, जय मन अभिमत, जन गण तंत्र विधाता, जय गण तंत्र विधाता, गौरव भाल हिमालय उज्जवल, हृदय हार गंगा जल, कटी विंध्याचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाता, जय जन भारत, हर खेत लहरे नद निर्जर, जीवन शोभा उर्वर, विश्व कर्मरत कोटि बाहुकर, अगणित पग ध्रुव तारा, जय जन भारत।
He is considered one of the major poets, especially of the Chhayavadi school of Hindi literature. He mostly wrote in Sanskritized Hindi. He authored 28 published works that include poetry, verse plays and essays. Aur unki ek aur kavita hai, Lavleen, badi khoobsurat si. Jeena apne hi mein ek mahaan karm hai. Jeene ka ho sadupyog, ye manuj dharm hai. Apne hi mein rehna ek prabuddh kala hai. Jag ke hit rehne mein सबका सहज भला है। जग का प्यार मिले जन्मों के पुण्य चाहिए, जग जीवन को प्रेम सिंधु में डूब चाहिए। ज्ञानी बनकर मत नीरस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए। So those were the lines of Sumitra Nandan Pant.
बहुत बहुत बाल्यावस्था से ही लिखने लग गए थे। कोसानी में साहित्य के प्रति पंत जी का जो अनुराग पैदा हुआ था वो वहीं कर होकर रह गए। कविता के प्रयोग में सगे संबंधियों को जो पत्र लिखते थे वो कविता के रूप में ही लिखते थे। शुरुआती दौर में उन्होंने बागेश्वर के मेले, वकीलों के धन लोलुप स्वभाव और तंबाकू का धुआं जैसी कुछ छुटपुट कविताएं लिखी। आठवीं कक्षा के दौरान उनका परिचय हुआ प्रख्यात नाटककार गोविंद वल्लभ पंत, श्यामचरण दत्त पंत, इलाचंद्र जोशी और हेमचंद्र जोशी जैसे साहित्यकारों से। अल्मोड़ा में तब हस्तलिखित पत्रिका सुधाकर और अल्मोड़ा अखबार नामक पत्र निकलता था जिनमें वो कविताएं लिखते रहते थे।
यस, इन 1968 सुमित्रा नंदन पंत बिकेम द फर्स्ट हिंदी पोएट टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड, विच इज कंसिडर्ड टू बी इंडियाज हाईएस्ट एक्लेड फॉर लिटरेचर। दिस वॉज अवार्डेड टू हिम फॉर अ कलेक्शन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम्स टाइटल्ड चिदम्बरा। The Indian government also honored him with Padma Bhushan in the year 1961. Unke bare mein Lavleen, the great kavi Nirala says that the most powerful thing in Pantji is that like Shelley, he makes his composition mellifluous and tender by enriching it with numerous similes and metaphors.
और अब बात करते हैं शिबू प्रसाद मुखर्जी। उनका जन्म आज ही के दिन 1974 में कोलकाता में हुआ था। फिल्म निर्देशक, लेखक और अभिनेता शिबू प्रसाद सामाजिक रूप में प्रासंगिक फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। सुख और रामधुन, हामी, कोंथो, गोत्रो जैसे कुछ लोकप्रिय नए जमाने के बंगाली फिल्म का उन्होंने ही निर्देशन किया। कोंथो के लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया।
यह शिबू प्रसाद मुखर्जी कोलैबोरेटेड विद नंदिता रॉय एंड मेड हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू विद द फिल्म इच्छे, विच गार्नर्ड बोथ क्रिटिकल acclaim as well as commercial success. The director Duo is known for making socially relevant films which are also entertaining to the viewers. They've also directed some of the popular, most new age Bengali films like Rakatan, Bela Seshe, Ichche, Muktodhara, Accident, Alik Sok and Ram Dhanu, among others. He also serves as a partner at Windows Production, and his film Praktan bagged multiple national awards, and Alik Sok was premiered at the Makhshidu Film Section in the Cannes Film Festival in 2013. His film Kontho was selected as the Indian entry for the Best International Feature Film at the 92nd Academy Awards. We have a song from his film.
সব প্রশ্নের চৌকাট ভেঙে যায়, পথঘাট স্বপ্নের তল্লাট হয়ে যায়, মুঠো মুঠো ছোটবেলা হঠাৎ জুড়তে যায়, মুঠো মুঠো ছোটবেলা হঠাৎ জুড়তে যায়।
और अब एक महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा की बात करते हैं। उनका आज जन्मदिन है, 20 मई 1977 में उनका जन्म हुआ था। भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हैं वो। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वनडे मैच में 1000 रन बनाने वाली अंजुम चोपड़ा पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। अंजुम चोपड़ा ने 17 साल की उम्र में क्रिकेट करियर शुरू किया था। उनके नाम काफी सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। वो आज के महिला क्रिकेटरों और युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है। अंजुम को क्रिकेट का शौक बचपन से ही था, और जिस समय की हम बात कर रहे हैं सायरा, उस समय लड़कियों को क्रिकेट खेलने की आजादी नहीं थी। उस वक्त क्रिकेट को लड़कों का खेल माना जाता था। इसके बावजूद अंजुम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में क्रिकेट ग्राउंड पर कदम रखा, और इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और बहुत सारी महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की वो प्रेरणा स्रोत बनी। और अब पीरू सिंह शेखावत की बात करें, उनकी भी आज जयंती है। 1918 में उनका जन्म हुआ था। भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक, कश्मीर घाटी के युद्ध में सक्रिय रूप से जूझते हुए उन्होंने पीर कांति और लिजिगनी ठिकानों पर अपनी फतह हासिल की थी। 1948 में दारापारी के युद्ध में पीरू सिंह ने वीरगति प्राप्त की। उनकी वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
Today we are also remembering Nachiket Ghosh, a Bengali music director who mainly composed for Bengali, Hindi and Odia songs. And some of his noted films for which he composed music was Bodhir Bon, Joydev, Ardhangini, Bhalo Varsha, Nishad Phal, Pathir Sheshe, Jharer Pare, Trijama, Nabajanma, Tapasi, among others. And we have a beautiful song from one of his films. Let's listen to it. A beautiful number, or waqt ab hum log ko ishara kar raha hai that it's time to wrap up the show. Lavleen
ji, shrotao ab samay ho chula hai aapse ijazat lene ka, ghadi ki suiyan yahi ishara kar rahi hain, to Lavleen Nigam aur Saira Mushtaba ko anumati dijiye parikrama karyakram yahin par samapt karne ki. Aap agar is karyakram ko dobara sunna chahte hain to log on kariye hamari website www.newzoneair.com par, sath hi aap hamari website app newzoneair par bhi hamare कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं ईमेल भी कर सकते हैं, पता है nfu.nsd@nic.in। और लवलीन और सायरा की तरफ से नमस्कार।